नमस्कार भारत, आज है 30 अक्टूबर दिन इतवार। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पड़ने वाली इस दिवाली पर देशभक्ति का रंग चढ़ाने की मोदी सरकार की मुहिम, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर बने अभियान का हिस्सा।
नमस्कार मेरे फौजी भाइयों, इस दिवाली के शुभ अवसर पर मैं आपके दोनों परिवारों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा, एक आपका फौजी परिवार और दूसरे आपके घर वाले। हैप्पी दिवाली, जय हिंद।
सेना और नवाज सरकार के बीच तनाव की खबर छपने की गिरी गाज, पाकिस्तान के सूचना मंत्री पद से हटाए गए और दिल्ली के प्रदूषण के लिए सिर्फ गाड़ियां और फैक्ट्रियां ही नहीं हैं जिम्मेदार।
नई फसल की तैयारी करने के लिए जो बचा कुछ स्टैम्प्स है उसको जला देते हैं ताकि वो सफाई हो जाए, लेकिन उससे एयर पोल्यूशन होता है और वो दिल्ली के एयर पोल्यूशन में कॉन्ट्रीब्यूट करता है।
लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार दिलनवाज पाशा से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार दीपावली भारत चीन सीमा पर आईटीबीपी के जवानों के साथ मनाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी बद्रीनाथ भी जाएंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन ने एफबीआई के उनके निजी ईमेल सर्वर इस्तेमाल करने के मामले की फिर से जांच शुरू करने के फैसले को अभूतपूर्व और परेशान करने वाला बताया है। एक चुनावी सभा में हिलरी क्लिंटन ने कहा है कि राष्ट्रपति चुनाव होने के 2 सप्ताह पहले इतनी कम सूचना के साथ ऐसी घोषणा करना हैरान करने वाला है। एफबीआई के निदेशक जेम्स कोमी ने कहा है कि उन्होंने नए ईमेल सामने आने की जानकारी को साझा करना जरूरी समझा और वो अमेरिका की जनता को भ्रमित करना नहीं चाहते हैं। कोमी ने शुक्रवार को संसद को बताया था कि हिलेरी के निजी ईमेल सर्वरों का इस्तेमाल करने की फिर से जांच की जा रही है। क्लिंटन के राजनीतिक विरोधी डोनाल्ड ट्रंप ने इस नए घटनाक्रम का पूरा चुनावी फायदा उठाने की कोशिश की है। उन्होंने हिलेरी पर जानबूझकर आपराधिक कृत्य में लिप्त होने के आरोप भी लगाए हैं। कोलोराडो में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा,
This is the biggest political scandal since Watergate.
ये वाटरगेट के बाद सबसे बड़ा राजनीतिक स्कैंडल है और सभी को उम्मीद है कि अंततः इस मामले में न्याय हो ही जाएगा। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन के यमन में किए गए हवाई हमले में कम से कम 30 लोगों के मारे जाने की रिपोर्टें हैं। यह हमला हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले पश्चिमी तटीय शहर होदीदा के अल जायदिया में एक इमारत पर किया गया जिसका इस्तेमाल जेल की तरह किया जा रहा था। स्वास्थ्य एवं सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक मारे गए लोगों में विद्रोही और कैदी शामिल हैं। हवाई हमलों में नागरिकों की मौत को लेकर अरब गठबंधन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। सर्बिया की पुलिस ने प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर वुचिच और उनके परिवार को उनके घर के पास भारी मात्रा में हथियार मिलने के बाद सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। बेलग्रेड में उनके आवास के पास रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड और राइफलों की गोलियां मिली हैं। गृहमंत्री नेबेडजा स्टेफानोविच ने बताया है कि ये हथियार जिस स्थान पर मिले हैं उसके पास प्रधानमंत्री की कार अक्सर धीमी होती है। वुचिच एक पूर्व राष्ट्रवादी नेता हैं जो अब यूरोपीय संघ समर्थक सुधारवादी बन गए हैं। इन हथियारों के बरामद होने के संबंध में अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी रेडियो की पहली सभा, सुनने वालों का स्वागत है कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली का त्यौहार भारत चीन सीमा पर पड़ने वाले आखिरी गांव माना में आईटीबीपी के जवानों के साथ मनाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। पिछले साल नरेंद्र मोदी ने दियों का ये त्यौहार भारत पाकिस्तान सीमा के पास मनाया था, उससे पहले सियाचिन में भारतीय सैनिकों के साथ। हाँ, इस बार ये अलग ज़रूर है कि इस बार एक अभियान चलाया जा रहा है कि लोग सेना को दिवाली की शुभकामना का संदेश भेजें। ये संदेश नरेंद्र मोदी ऐप और ऑल इंडिया रेडियो के जरिए भेजे जा रहे हैं। इधर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार को एक खत भेजा है। पूरी रिपोर्ट सुने वात्सल्य राय से।
नमस्कार मेरे फौजी भाइयों, इस दिवाली के शुभ अवसर पर मैं आपके दोनों परिवारों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा, एक आपका फौजी परिवार और दूसरे आपके घर वाले। हैप्पी दिवाली, जय हिंद।
ये है भारत रत्न और पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ने दूसरे तमाम लोगों की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर सेना के जवानों को दिवाली की शुभकामना दी है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी आईटीबीपी के जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। वो आज उत्तराखंड में चीन की सीमा से लगे माणा में होंगे। हालांकि दिवाली के मौके पर सिर्फ प्रधानमंत्री ही सेना को याद नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी दिवाली के ठीक पहले प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में विकलांगता पेंशन समेत सेना के अधिकारियों और जवानों की कई समस्याओं को उठाया गया है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से वन रैंक वन पेंशन योजना को अर्थपूर्ण तरीके से लागू करने की मांग भी की है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी की ये मांग राजनीति से प्रेरित दिख रही है। पार्टी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन कहते हैं,
नरेंद्र मोदी जी सैनिकों से बहुत प्यार करते हैं, ये दिवाली सैनिकों को समर्पित की है और वन रैंक वन पेंशन का काम जो कांग्रेस इतने दिन से लटका रही थी वो आखिर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ही किया है, इसलिए राहुल जी को इसमें ज्यादा फिक्र में दुबले होने की जरूरत नहीं है, इस पर सियासत करने की जरूरत राहुल जी को नहीं है।
सेना के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर भी लग रहा है। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार और बीजेपी सितंबर के महीने के आखिर में हुए सर्जिकल स्ट्राइक का राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कल एक कार्यक्रम में कहा,
आप चर्चा कर रहे हो सर्जिकल स्ट्राइक की, पढ़े से पढ़े लिखे लोग नहीं जानते कि सर्जिकल स्ट्राइक क्या है। और मैं तो मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ और मैं तो कहता हूँ कि हमारे साथ के पढ़े हुए लड़कों का पता कर लो वो किस जगह पर खड़े हैं और किस जगह पर सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं। हम जानते हैं, उनसे पूछा मैंने, बोले इस तरह की तो सर्जिकल स्ट्राइक हमेशा होती रही है, फौज का काम ही यह है करने का, फौज यही करती है। लेकिन सोचो ये बीजेपी के लोग देश को कैसे गुमराह कर रहे हैं, किस रास्ते पे ले जाना चाहते हैं।
अखिलेश यादव ही नहीं बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती भी सर्जिकल स्ट्राइक के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश कर चुकी हैं। जाहिर है फिलहाल हर राजनीतिक दल सेना के शौर्य की तारीफ करते हुए विरोधी को आगाह कर रहा है कि इसका राजनीतिक फायदा लेना ठीक नहीं है, लेकिन चुनावी मौसम में जब भी ये बातें उठती हैं गलत सियासी नफे नुकसान का ही लगाया जाता है।
रिपोर्ट सुना रहे थे वात्सल राय। ऐसी खबर है कि माना की यात्रा में प्रधानमंत्री बद्रीनाथ भी जाएंगे। सीधे चलते हैं देहरादून शिव जोशी के पास। शिव, कार्यक्रम में स्वागत है। ये जानना चाहते हैं कि जाहिर है कि प्रधानमंत्री जब जा रहे हैं तो वहां सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था होगी, क्या जानकारियां हैं हमारे पास?
जी फैजल, जैसा कि पता चला है करीब 10 बजे के करीब बद्रीनाथ में एक तय किया गया है पूजा का कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी का, और ये पता चला है कि उनके साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी होंगे। तो इस लिहाज से बद्रीनाथ मंदिर में जो मुख्य पुरोहित और जो वहाँ के मुख्य कार्याधिकारी यानी जो पूरी बद्रीनाथ की जो संचालन समिति है धाम की, वो पूरी मुस्तैद है, सक्रिय है और वो तैयारियां वहां पर चल रही हैं। इसके अलावा सुरक्षा की बात जहां तक है, कल इसे लेकर एक रेकी भी हुई। हालांकि जब हमने आधिकारिक तौर पर किसी से बात करने की कोशिश भी की सरकार में और पुलिस में और इवन बद्रीनाथ में भी, तो कोई भी ऑन रिकॉर्ड बोलने के लिए तैयार नहीं था इस यात्रा को लेकर। लेकिन अनऑफिशियली सब ये बता रहे थे कि ऐसा पता चला है कि वो करीब 10 बजे के करीब हेलीकॉप्टर से पहले गोचर पहुंचेंगे। गोचर चमोली जिले में ही एक सेना का एक हेलीपैड है वहां पर फैसल, और गोचर से फिर वो रवाना होंगे हेलीकॉप्टर से, सेना के हेलीकॉप्टर से बद्रीनाथ के लिए। 10 बजे के करीब उनका पूजा का कार्यक्रम है और उसके बाद फिर वो वहां से 3 किलोमीटर आगे जो माणा गांव है और वहीं पर उनकी पिकेट्स और पोस्ट भी हैं आईटीबीपी की, भारत तिब्बत सीमा पुलिस की, उसको उसके जवानों के साथ वहां पर वो दिवाली मनाएंगे। वहां पर वो रुकेंगे उनके साथ, कितना देर रुकेंगे, शाम को ही लौट आएंगे, ये अभी कार्यक्रम तय नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि वो वहां पर कुछ घंटे बिताएंगे और फिर वो वापस दिल्ली का रुख करेंगे।
ये बताइए कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड में कोई और प्रोग्राम भी है?
जी नहीं, जो फिलहाल जो जानकारी मिली है फैजल, उसके मुताबिक उनका आज का जो शेड्यूल, आज का जो कार्यक्रम है वो बद्रीनाथ के लिए ही निर्धारित है, क्योंकि माणा में सिपाहियों के साथ मिलना, फौज के साथ मिलने का एक अपना अलग अहमियत है, खासकर प्रधानमंत्री के लिए भी, जो उनका एक विशेष रुचि का भी काम है, वो इसको मानते आए हैं। तो लिहाजा बताया ये जा रहा है कि वो बद्रीनाथ में दर्शन करेंगे और उसके बाद सिपाहियों से मिलने के बाद वो दिल्ली लौट जाएंगे। जाएंगे। अभी तक के उनके पूरे शेड्यूल में कहीं और रुकने का या कहीं कोई सभा करने का, संबोधित करने का कोई कार्यक्रम नहीं है। अलबत्ता यह तय है कि फौजियों को तो वो जाहिर संबोधित वहां पर माना में करेंगे ही।
ये बताइए शिव, के माना के बारे में थोड़ी जानकारी दे श्रोताओं में। ये बताया जा रहा है कि भारत चीन सीमा पर आखिरी गाँव है।
जी बेशक फैसल, माणा अपने आप में बहुत ही दिलचस्प और बड़ी अनोखी किस्म की जगह है। बद्रीनाथ जो धाम है वो करीब 3100 मीटर की ऊंचाई पर है। इसके बाद 3200 मीटर यानी कि 10,500 फिट की ऊंचाई पर ये माणा गांव है। बद्रीनाथ और माणा गांव लगभग आसपास सटे हुए हैं। 3 किलोमीटर आगे माणा गांव पड़ता है। इस समय वहां पर बहुत भारी बर्फ पड़ जाती है, लिहाजा वहां के जो लोग हैं जो मार्छा और भोटिया जाति के लोग हैं, वो ऐसे मौकों पर निचले इलाकों में आ जाते हैं, खासकर रुद्रप्रयाग जिले की तरफ, और वहां पर फिर आकर अपनी गुजर बसर करते हैं। पहले जमाने में कहा जाता था कि बहुत पहले तिब्बत से इन आदिवासियों का व्यापार हुआ करता था। माणा दर्रे से पहले ये एक आखिरी गांव है फैजल, भारत का सीमांत गांव भी हम कह सकते हैं। और यहाँ से जो भारतीय सीमा है जो तिब्बत और चीन से लगी है वो सिर्फ 24 किलोमीटर दूर है, यानी कि बहुत ही, जिसे कहना चाहिए कि भौगोलिक रूप से काफी विकट इलाका है। और यहाँ पर आईटीबीपी दिन रात आईटीबीपी के जवान पहरा देते हैं और जो तिब्बत और चीन से लगी जो सीमा है उसकी सुरक्षा करते हैं। सांस्कृतिक तौर से भी और सैन्य लिहाज से भी, सामरिक लिहाज से भी इस माणा गांव की बड़ी अहमियत भी है फैजल, पूरे देखा जाए तो पूरे परिदृश्य में। जी
बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए शिव जोशी। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पर नज़र रखने वाले राजनीतिक पंडित लगातार दावा करते रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव की बिसात पर राष्ट्रवाद एक बड़ा मुद्दा होगा। लेकिन क्या कांग्रेस भी इसी मुद्दे को हथियार बनाने की कोशिश में है? अगर नहीं तो फिर राहुल गांधी ने इसी हाल के मौके पर वन रैंक वन पेंशन और सेना से जुड़े दूसरे मुद्दे क्यों उठाए हैं? हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार शीला दीक्षित के सामने यही सवाल रखा।
देखिए ऐसा है कि ये जो स्ट्राइक्स की गई हैं, ये चलती रहती है, बॉर्डर है वो, बट इस वक्त उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो कश्मीर की हालत है इस वक्त, 100 से भी ज्यादा दिन हो गए हैं जब एक तरह से कर्फ्यू लगा हुआ है, उस पर तवज्जो लोग नहीं दे पा रहे हैं।
जिस तरह से राहुल गांधी ने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को और वन रैंक वन पेंशन की बात को उठाई है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी क्या इस मुद्दे को उठाने की कोशिश में है?
ये डिमांड वन रैंक वन पेंशन की बहुत पुरानी है और हम सबको इसमें सहयोग देना चाहिए और गवर्नमेंट को इसे लागू करना चाहिए।
तो आपको क्या लगता है, ये जो राष्ट्रवाद का मुद्दा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की ओर से इसको उठाने की शुरुआत की, कांग्रेस भी चुनाव में इस मुद्दे को लेकर आगे जाएगी, उनको काउंटर करने की यही रणनीति है?
क्या हमारा तो डेवलपमेंट का ही मुद्दा रहता है, तो वो हमारा मुद्दा तो जनरल वैसा रहता है। अब क्या डिटेल हमारा जब मैनिफेस्टो निकलेगा तभी मैं बता सकूंगी आपको।
हाँ। समाजवादी पार्टी की जो पूरी राजनीतिक उठापटक है, इस बीच मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बार बार राहुल गांधी की तारीफ की है, तो इस तरह के संकेत आ रहे हैं जिसे बहुत से लोग दोनों दलों के बीच में या राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच में दोस्ती के तौर पर देख रहे हैं, क्या इसकी कोई संभावना बन रही है?
जैसे आपने कहा कि संकेत आ रहे हैं, अभी संकेत हैं, अब ये क्या इसका रूप होगा, फाइनल रूप क्या बनेगा, इस पर मैं टिप्पणी कहना इसलिए नहीं अपने आप को समझती हूँ कि मैं कर सकती हूँ, क्योंकि जब तक कोई चीज राजनीति में हो ना जाए तब तक अंदाजे ही होते हैं।
जिस समय कांग्रेस ने आपको प्रोजेक्ट किया, चेहरा बनाकर अपना सामने रखा, उस समय की और इस समय की स्थिति की अगर आप तुलना करें तो कितना कुछ बदलाव आया है पार्टी के पक्ष में?
देखिए पक्ष में इसलिए आया है, जो कांग्रेस में हमने यात्राएं करी, दो दो महीने, डेढ़ डेढ़ महीने एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट गए, तो उसमें जो लोगों का रुझान और जो दिलचस्पी कांग्रेस के प्रति दिखाई दी वो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। जो सब लोग कहते थे कि कांग्रेस के बारे में तो कोई सोचता भी नहीं है, लोग सोचने लगे हैं, चिंतन करने लगे हैं और कांग्रेस पार्टी एक उस मुकाम पर पहुंच गई है जिसमें ऐसा लगता है कि लड़ाई केवल बीएसपी सपा और बीजेपी में नहीं है, कांग्रेस उसमें बड़ी अच्छी तरह से बड़ी मजबूती से शामिल है।
दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट की जाने वाली शीला दीक्षित, उनसे बात की थी वात्सल्य राय ने।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
और अब रुख करते हैं पाकिस्तान की तरफ। सेना और नवाज शरीफ हुकूमत के बीच तनाव की खबर अखबार में छपने की गाज पाकिस्तान के सूचना मंत्री पर गिरी है और उन्हें पद से हटा दिया गया है। पाकिस्तान के मशहूर अखबार डॉन में खबर छपी थी कि नवाज शरीफ ने सेना को उपद्रवी तत्वों पर लगाम रखने की सलाह दी है क्योंकि उससे मुल्क की बदनामी हो रही है। इसके बाद इस खबर के लेखक संवाददाता सिरिल अल्मीदा के विदेश जाने पर भी पाकिस्तान ने रोक लगा दी थी। अब इस मामले की जांच हो रही है। वात्सल्य राय ने इस्लामाबाद में मौजूद हमारे साथ ही आसिफ फारूकी से बात की और पूछा कि सूचना मंत्री को हटाने की क्या वजह बताई गई है।
वज़ीर-ए-आज़म हाउस से बयान जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि परवेज रशीद जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उनसे कहा गया है कि वो अपनी उसको छोड़ दे और उसमें ये भी कहा गया है कि जो इंक्वायरी शुरू हुई है उस रिपोर्ट के बारे में जो डॉन में 6 अक्टूबर को छपी थी उसके बाद का कोई मामला जाके मिलता है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से और उसके साथ साथ मिलिट्री और सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसीज पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई है जो मजीद इस मामले में इंक्वायरी करेगी।
जी, तो ये जो कार्रवाई की गई है क्या ये सेना के दबाव में की गई है या मुकम्मल जांच रिपोर्ट जो आई है उसके आधार पर ही की गई है, क्या इस समय समझा जा रहा है?
देखिए, ये बहुत क्लियर बात है कि सेना का दबाव तो था कि जब ये खबर छपी थी डॉन अखबार में उसके अगले ही दिन आर्मी चीफ ने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की थी और उनसे इस बारे में बात की थी और कहा था कि ये नेशनल सिक्योरिटी का ब्रीच है और इसके ऊपर इंक्वायरी की जाए कि ये किसने ये खबर जो है वो लीक की है। उसके बाद इस प्रेशर को मजीद बढ़ाने के लिए कोर कमांडर्स की जो पाकिस्तान आर्मी के सीनियर मोस्ट लोग होते हैं उनकी एक मीटिंग में ये खबर डिस्कस हुई और उसके बाद जो स्टेटमेंट डाली हुई उस पर भी कहा गया था कि नेशनल ब्रीच है।
तो फिलहाल जो हालात है पाकिस्तान में और जिस तरह से ये फैसला लिया गया है इसके बाद प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के लिए क्या दिक्कतें बढ़ेंगी?
देखिए, ये जरा मुश्किल है कहना कि एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के जाने से क्या ये मसला मजीद उलझा है या सुलझ गया है। इसमें एक राय तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर इतने ज्यादा दबाव में है कि वो अब अपने लोगों की कुर्बानी देकर अपने ऊपर से प्रेशर हटाना चाह रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो दूसरी राय है वो ये भी है कि ये सारा मामला सेना के साथ के बाद हो रहा है। वैसे अभी तक ये बात तय नहीं हुई कि परवेज रशीद का कसूर क्या था, क्या उन्होंने वो इंफॉर्मेशन लीक की या उनसे कोई जाब्ते की ऐसी गलती हुई जिसकी वजह से उनको हटना पड़ा अपने ओहदे से।
पाकिस्तान के सूचना मंत्री परवेज रशीद के बारे में बात कर रहे थे आसिफ फारूकी इस्लामाबाद से। और अब देखते हैं कि अखबार क्या कर रहे हैं। दिलनवाज पाशा मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ, दोनों हाथ में उनके अखबार हैं और चारों तरफ अखबारों का पुलिंदा फैला हुआ है उनके सामने। दिलनवाज, ये बताइए कि क्या कर रहे हैं?
जी, भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा पर चार पाकिस्तानी सुरक्षा चौकियों को तबाह करने का दावा किया है और यह खबर आज के लगभग सभी अखबारों में पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित है। एक और खबर जो आज सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है वो है समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद मुनव्वर सलीम के निज सचिव पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के मामले में गिरफ्तार हुए हैं। बताया जा रहा है कि वो पाकिस्तान भारत से जुड़ी खुफिया जानकारियां पाकिस्तान को देते थे और ये खबर लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। अमर उजाला में इससे जुड़ी एक और खबर है जिसके मुताबिक ISI के निशाने पर RSS के नेता हैं और भारत में सक्रिय जासूस ये जानकारियां पाकिस्तान को मुहैया करा रहे थे। दिल्ली में सुरक्षा लेने वालों जो लोग सरकारी सुरक्षा लेते हैं,
सरकारी सुरक्षा है जी,
ऐसे लोगों की तादाद 20% बढ़ी है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है इनमें से 10% लोग ऐसे हैं जिनको सुरक्षा की ज़रूरत ही नहीं है और समाज में वो अपना रुतबा दिखाने के लिए सुरक्षा का इस्तेमाल करते हैं।
मतलब सुरक्षित होना चाहते हैं ताकि समाज में लोग समझें कि इनको सुरक्षित हैं ये।
या ये समझें कि ये वीआईपी हैं।
ये वीआईपी हैं।
आज दीपावली है और इससे जुड़ी एक खबर आज के नवभारत टाइम्स के पहले पन्ने पर है, जिसमें नोएडा के एक अस्पताल में मुसलमान और ईसाई डॉक्टरों ने अपने जो हिंदू साथी डॉक्टर थे उनकी ड्यूटी करने के लिए एक्स्ट्रा ड्यूटी की है ताकि वो दीपावली पर छुट्टी मना सकें। डॉक्टरी ऐसा पेशा है जिसमें शायद छुट्टी आसानी से ना मिलती हो,
जैसे हम भी अक्सर मनाए करते हैं।
जी, द पायनियर में एक खबर है जिसके मुताबिक एयर इंडिया के को माफ़ी मांगनी पड़ी है। दरअसल एयर इंडिया की जो पत्रिका है शुभ यात्रा, उसमें छपे एक लेख में कहा गया था कि जगन्नाथ जो मंदिर है वहाँ पर नॉन वेजिटेरियन खाना भी खिलाया जाता है, और इस खबर के इस को छापने के लिए पत्रिका को ही न सिर्फ हटाना पड़ा है बल्कि उसके CMD को माफ़ी मांगनी पड़ी है।
माफ़ी मांगनी पड़ी है। और श्रोताओं को बता दें कि अगर इस खबर को आप पढ़ना चाहते हैं तो आइए BBC Hindi.com पर।
एक और खबर हिंदुस्तान टाइम्स के पहले पन्ने पर है, बड़ी दिलचस्प खबर है। तेलंगाना में एक वास्तु मंत्री भी हैं, मतलब मंत्री नहीं है लेकिन उनको मंत्री जैसा दर्जा प्राप्त है, और
वास्तु मंत्री
जी तो इनका नाम है सुद्दला सुधाकर तेजा, मुख्यमंत्री के बहुत करीबी हैं। इनका काम यह है कि राज्य में बनने वाली जितनी भी इमारतें हैं वो पारंपरिक हिंदू वास्तुकला को फॉलो करें, उसका पालन करें, और उसकी जिम्मेदारी इनकी है। और जितने भी इमारतें बनती हैं राज्य में
सरकारी इमारतें
और उनको पास करने के लिए, मतलब इनकी अनुमति के बिना वो सरकारी इमारतें नहीं बनती हैं। और कहा जाता है कि जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं KCR, वो भी वास्तु के काफ़ी जो है उसका सम्मान करते हैं और वास्तु को काफी
यकीन रखते हैं।
जी, एक खबर द टाइम्स ऑफ इंडिया में है जिसके मुताबिक CBSE के जितने भी स्कूल हैं उन्हें अब अपनी सारी जानकारियां सार्वजनिक करनी होंगी, कितनी फीस लेते हैं, क्या सुविधाएं देते हैं, सब कुछ बताना होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए दिलनवाज पाशा। और अब सुनते हैं दिल्ली में प्रदूषण की बात। जब ये सामने आती है तो इल्ज़ाम बस यहाँ की गाड़ियों की बड़ी तादाद और छोटी फैक्ट्रियों पर लग कर रह जाता है, लेकिन दिल्ली सरकार ने कहा कि उसकी एक और भी बड़ी वजह है जिसमें पड़ोसी राज्यों के किसान कहीं न कहीं जाने अनजाने में जिम्मेदार हैं। सुनिए नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
क्या आप उत्तर भारत में दिल्ली NCR इलाके या उसके आसपास रहते हैं? क्या पिछले कुछ दिनों में आपको सांस लेने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी है, खांसी बढ़ गई है और जुकाम बार बार हो रहा है, और दिवाली के दिन शाम या उसके बाद आपका घर से बाहर घूमने फिरने का प्लान भी बन रहा है क्या? अगर हाँ तो हवा में बढ़े हुए प्रदूषण के चलते थोड़ी ज्यादा तकलीफ उठाने के लिए भी कमर कस लें। जी हाँ, पर्यावरण मामलों की संस्था CSE के अनुसार 7 से लेकर 24 अक्टूबर के बीच 77% दिनों में दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण का स्तर काफी खराब रहा है। तमाम विशेषज्ञों की राय है कि आने वाले दिनों में ये स्तर खराब हो सकता है क्योंकि दिवाली भी पड़ रही है। दरअसल मामला सिर्फ दिवाली में जलने वाले पटाखे और उनसे होने वाले वायु प्रदूषण से कहीं बड़ा है। दिल्ली से सटे राज्यों हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में फसल की कटाई के बाद खेतों में जलाए जाने वाले फुआल का भी इसमें खासा योगदान है। टॉक्सिक लिंक्स में वायु प्रदूषण मामलों के जानकार रवि अग्रवाल को सुनिए।
खत्म हो जाता है जब फसल को काट देते हैं, तो उसको नई फसल की तैयारी करने के लिए उसको जो बचा कुचा जो उसमें स्टेम्स है उसको जला देते हैं ताकि वो सफाई हो जाए, लेकिन उससे एयर पोल्यूशन होता है, स्पेशली पार्टिकुलेट मैटर काफी बनता है और वो दिल्ली के एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है, और स्पेशली स्मॉल पार्टिकुलेट PM10 जिसको हम कहते हैं पार्टिकुलेट मैटर 10 माइक्रोन 2.5 माइक्रोन जो खास तौर पर फेफड़ों पर असर करता है।
कुछ दिन पहले दिल्ली NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण के मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने UP, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान सरकारों से पूछा था कि फसल जलाने यानी क्रॉप बर्निंग को लेकर उनकी क्या तैयारियां हैं, जबकि दिल्ली सरकार ने अदालत में पिछले कुछ वर्षों की सैटेलाइट तस्वीरें पेश की हैं जिनमें कथित तौर से क्रॉप बर्निंग को प्रदूषण या स्मॉग की बड़ी वजह बताया गया है। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। अमृतसर, पंजाब में रहने वाले एक किसान सरवन सिंह पंधेर को सुनिए जो कहते हैं कि उनके पास फुआल जलाने की मजबूरी है, उसके अलावा कोई चारा ही नहीं। सरवन सिंह पंधेर ने बताया,
इसलिए किसान जो धान है इस समय जो कंबाइन से कटाता है, जो धान का भूसा बच जाता है उनको निपटाने के लिए किसान का खर्च बहुत आता है। किसान इस बात से अवेयर है कि अगर हम भूसे को जलाएंगे तो हमारे जो मित्र कीड़े हैं वो बढ़ जाएंगे या इन्वायरमेंट जो खराब होगा, पर इसमें बात है भी किसान तो पहले कर्जा ही हुआ किसान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम पंजाब सरकार से भी कहते हैं, केंद्र सरकार से भी, वो कुछ इस तरह की फैक्ट्रीज लगाए कि जो धान के भूसे को लेके उसको कोई यूटिलाइज कर ले और को काम कर ले। हम जलाना नहीं चाहते, किसानों की जो धान के भूसे जलाने की वो मजबूरियां हैं।
तो खेतों में क्रॉप बर्निंग के मामले पर सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी NGT भी रोक लगा चुके हैं और इसके बाद राज्य सरकारों ने इस पर सख्ती बरतनी शुरू की है। लेकिन मामला सिर्फ दूर दराज के खेतों में जलाए जाने वाले पुआल का ही नहीं है, दिल्ली NCR में भी कूड़े को जलाने की समस्या अभी भी बरकरार है। इसी वर्ष जनवरी में सरकार ने ऐसा करने पर 15,000 रुपए से लेकर 1,00,000 तक का जुर्माना लगाने के नियम बनाए थे। लेकिन दिल्ली हो चाहे नोएडा चाहे गुड़गांव, अभी भी इसकी तमाम शिकायतें निरंतर सुनाई पड़ती हैं। दिल्ली सरकार के पास वायु प्रदूषण पर गठित संस्था डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन है, जिसके कोऑर्डिनेटर नमित अरोड़ा को सुनिए।
इसको डील करने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि ये क्यों होता है। एक कारण वजह यह है कि ये नंबर ऑफ क्रॉप साइकिल्स बढ़ गई हैं, जैसे कि जो फार्मर्स हैं वो साल में 3 बार क्रॉप्स प्लांट करते हैं, तो उनके पास एक बहुत कम विंडो होती है अक्टूबर में, जो अपना जो क्रॉप का रेजिड्यू होता है, जो राइस स्ट्रॉ जिसे बोलते हैं, उसको हटाने के लिए। उनको लगता है कि ये बर्न करना सबसे जल्दी और सबसे सस्ता तरीका है। तो हमको क्या करना चाहिए कि नए तरीके ढूंढने जरूरी हैं, ऑल्टरनेट्स हमको प्रोवाइड करने जरूरी हैं, नई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना जरूरी है, और फाइनली एक एनफोर्समेंट की भी जरूरत है।
वैसे इन तीनों कारणों को बढ़ावा देने का काम मौसम कर सकता है, जिससे वायु प्रदूषण से निजात मिलना फिलहाल तो मुश्किल लग रहा है। वजह है वेस्टर्ली या पश्चिम से चलने वाली हवाओं के बदले अब ईस्टर्ली यानी पूरब से चलने वाली हवाओं के आगमन। जानकारों के मुताबिक इस मौसम में प्रदूषण के कण हवाओं में मिलकर ठहराव की स्थिति बना देते हैं, जिससे खांसी और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और दमे की बीमारियां कई प्रतिशत बढ़ सकती हैं। बहरहाल अब जब दिवाली करीब है तो इस बात की चिंता अपने चरम पर है कि वातावरण में प्रदूषण का स्तर क्या है। लेकिन असल चिंता ये भी है कि हर वर्ष दिवाली के पहले ही इस पर विचार ज्यादा क्यों होता है। नितिन श्रीवास्तव, BBC दिल्ली।
और अब वक्त हो चला है खेल की खबरें सुनने का।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। मेजबान भारत ने कल विशाखापत्तनम में खेले गए 5वें और आखिरी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड को 190 रन से करारी मात दी और इसके साथ ही सीरीज 3-2 से अपने नाम कर ली। न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 270 रनों का लक्ष्य था, लेकिन उसकी पूरी टीम 23.1 ओवर में ही केवल 79 रन पर ढेर हो गई। उसके तमाम बल्लेबाज इस मुकाबले में गीला पटाखा साबित हुए। लेग स्पिनर अमित मिश्रा की गुगली के सामने न्यूजीलैंड के खिलाड़ी फिरकी की तरह नाचते दिखे। अमित मिश्रा ने 18 रन देकर 5 विकेट झटके, वो मैन ऑफ द मैच रहे। उन्होंने पूरी सीरीज में 15 विकेट हासिल किए, उन्हें मैन ऑफ द सीरीज भी चुना गया। उनके लिए तो दिवाली और क्रिसमस एक साथ ही आ गए।
बिल्कुल आ गए, और इंडियन टीम के लिए भी बहुत अच्छी बात है जिस तरह से मैंने परफॉर्म किया। शुरू के 2 ओवर में थोड़ा सा टेंस था, बट MS भाई आए मेरे पास, उन्होंने अपना खुल के बॉल डाल और विकेट के लिए बॉल दे जैसे तू डालता है, और वो डालना जब स्टार्ट हुआ तो विकेट मिलने स्टार्ट हुए। तो मैं ये कहूँगा कि पूरी टीम का और MS भाई ने जो टिप्स दिया उससे विकेट मिले।
न्यूजीलैंड के 8 खिलाड़ी तो दहाई के अंक तक भी नहीं पहुंचे। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट खोकर 269 रन बनाए। उधर मलेशिया में खेली जा रही पुरुष एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी चैंपियनशिप में भारत ने कल दमदार खेल दिखाते हुए फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। फाइनल में भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। इसके अलावा सिंगापुर में खेली जा रही महिला हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय महिला हॉकी टीम ने जापानी टीम के खिलाफ अपना मुकाबला 2-2 से बराबरी पर समाप्त किया। वहीं मीरपुर में बांग्लादेश और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जहां कल खेल के दूसरे दिन बांग्लादेश ने अपनी दूसरी पारी में 3 विकेट खोकर 152 रन बना लिए थे।
और कार्यक्रम के खात्मे से पहले एक बार फिर से सुनवा रहे हैं आपको विश्व समाचार।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार दीपावली भारत चीन सीमा पर ITBP के जवानों के साथ मनाएंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन ने FBI के उनके निजी ईमेल सर्वर इस्तेमाल करने के मामले की फिर से जांच शुरू करने के फैसले को अभूतपूर्व और परेशान करने वाला बताया है। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन के यमन में किए गए हवाई हमले में कम से कम 30 लोगों के मारे जाने की रिपोर्टें हैं। सर्बिया की पुलिस ने प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर वुचिच और उनके परिवार को उनके घर के पास भारी मात्रा में हथियार मिलने के बाद सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाया है। स्पेन की संसद ने देश की दक्षिणपंथी पार्टी के नेता मारियानो राखोय को प्रधानमंत्री बनने की पुष्टि की है। लीबिया के बेनगाजी शहर में एक कार बम धमाके में एक चर्चित राजनीतिक कार्यकर्ता की मौत हो गई है। बीबीसी समाचार।
स्टूडियो मैनेजर थे दीपक जसरोठिया। रेडियो पर अगली मुलाकात एक घंटे में, तब तक बने रहिए bbchindi.com पर। नमस्कार।